Înșante.
Înșante.
Obiectul numărului 9 May 1983. Kumar se mulakat. Sabhi Kumar, first number mein aane wale ho na. First number ek hota hai ya itne hote hai. Acha, first division mein aane wale ho. फर्स्ट आने वालों की विशेषता क्या होती है वह जानते हो? फर्स्ट में आने वाले सदा बाप समान होंगे. समानता ही समीपता लाती है. समीप अर्थात समान बनने वाले ही फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं. तो बाप समान कब तक बनेंगे? जब विजयमाला के नंबर आउट होंगे, हो जाएंगे. फिर क्या करेंगे? कोई डेट फिक्स है? डेट फिक्स कौन सी करनी है? डेट नहीं, लेकिन अब की घड़ी. क्या इसमें मुश्किल है? कुमारों को कौन सी मुश्किल है? पापा पूछ रहे हैं कुमारों को कौन सी मुश्किल है. दो रोटी खाना है और प्रभु के गुण गाना है. दो रोटी खाना है और बाप की सेवा में लगना है. यही काम है ना? दो रोटी के लिए निमित्त मात्र कोई कार्य करते हो ना? करते हो, लगाव से तो नहीं करते हो ना? निमित्त कहने से नहीं होता, कुमार कहने से नहीं करते, स्वतंत्र है. तो सदा लक्ष्य रहे बाप समान बनना है. जैसे बाप लाइट है, वैसे डबल लाइट. औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो. सी फादर, फॉलो फादर करना है. यही सदा याद रखो. स्वयं को सदा बाप की छत्रछाया के अंदर रखो. छत्रछाया में रहने वाले सदा सेफ है, मायाजीत बन ही जाते हैं. अगर छत्रछाया के अंदर नहीं रहते, कभी अंदर कभी बाहर, तो हार होती है. छत्रछाया के अंदर रहने वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ती. स्वतः ही सर्वशक्तियों की किरणें उसे मायाजीत बनाती है. अव्यक्त मुरली 9th May 1983. सभी कुमार फर्स्ट नंबर में आने वाले हो ना. फर्स्ट नंबर एक होता है या इतने होते हैं? अच्छा, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो. फर्स्ट आने वालों की विशेषता क्या होती है वह जानते हो? फर्स्ट में आने वाले सदा बाप समान होंगे. फर्स्ट में आने वाले सदा बाप समान होंगे. फर्स्ट नंबर की आत्माएं, नंबर वन तकदीरवान आत्माओं की क्या निशानी है? संडे की मुरली, एक तो सर्व प्राप्तियां संपन्न होंगे. प्राप्तियों के झूले में, खजानों के झूले में झूलते रहेंगे. चारों ओर खजाने ही दिखाई देंगे. सदा चढ़ती कला में रहेंगे. अब प्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी. तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है, सर्व प्राप्तियां. और हर समय प्राप्तियां होती रहेगी. हर श्वास, हर संकल्प, हर समय प्राप्तियां ही प्राप्तियां. सर्व गुणों से संपन्न होंगे, सर्व प्राप्तियों से संपन्न, सर्व शक्तियों से संपन्न. अप्राप्त ऐसी कोई भी वस्तु उनके खजाने में नहीं होगी. तो ये सबसे पहली निशानी है. और आगे साक्षी दृष्टा, नंबर वन तकदीरवान आत्माओं की निशानी संडे की मुरली.
साक्षी दृष्टा भी है, लेकिन बाद में जिसमें निशानी
है. सभी आत्माएं जो है अपने अनादि स्वरूप में अति प्रिय और भाई भाई की दृष्टि से देखते हैं. वो सभी आत्माओं को अपनी अनादि स्वरूप में देखते हैं, अति प्रिय रूप में देखते हैं. और क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं, इसके लिए सभी भाई भाई है. सभी के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रहती है. कौन सी? सदा सुखी और सभी शांत हो जाए. ये हो गया सेकंड. तीसरा, उसमें तो नंबरिंग कुछ और है. ये जो ओरिजिनल मुरली है उसकी नंबरिंग है. और रूहानी नॉलेज होने के कारण हर आत्मा के कर्म के, कहानी के, संस्कार के, लाइट और माइट के ज्ञान होने के कारण उनके साथ इस तरह से संबंध संपर्क में आते हैं कि जैसे न्यारे और प्यारे रहते हैं, आते हुए भी न्यारे और प्यारे होते हैं, हर आत्मा के पार्ट को जानते हुए उसी अनुसार उनके साथ पार्ट में आते हैं। तो ये है, वो सदा ही बेहद में रहेंगे। हद में दुख है, बेहद में सुख है, बेहद का नॉलेज, बेहद का स्नेह, बेहद की वृत्ति, बेहद का संबंध, बेहद का परिवार, उसकी वजह से कभी दुखी नहीं होते, इसी कारण वो सुख स्वरूप रहते हैं। बेहद में होने के कारण क्या होता है, सुख स्वरूप होते हैं। और नंबर वन तक तीरो अनात्माओं की निशानी, किसी के हर समय हर संकल्प और हर कर्म करते हुए त्रिकालदर्शी की स्थिति में रहते हैं, इसके लिए क्या क्यों नहीं करते, या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप और कोई भी आश्चर्य नहीं, हर चीज में नथिंग न्यू का पार्ट पक्का रहता है, तो क्या क्यों नहीं, ये तकदीरवान आत्माओं की निशानी है। कैसे करना है, ये तकदीरवान आत्माओं की निशानी है। और रूहानी संबंध के कारण एकाग्रता होती है, और एकाग्रता के कारण उनमें समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति होती है, निर्णय शक्ति होती है, सामना और समाने की शक्ति होती है। इस वजह से सदा अचल और साक्षी रहते हैं। वो उसमें आ गया पहले, इसमें बेहद वाला, हाँ, दूसरों के संस्कार की कहानी में, कि उनके पार्ट को देखते हुए भी वहां पर भी अचल और साक्षी रहते हैं। तो ये सारी क्या है, निशानियां। किसकी निशानियां, तकदीरवान आत्माओं की निशानियां। उसमें भी बाबा ने उस मुरली में दो नंबर कहे, एक नंबर दो नंबर, ये फर्स्ट नंबर की आत्मा है जिनके लिए कहा है, फर्स्ट क्लास या फिर सतयुग में आने वाली आत्माओं की ये सारी ही निशानियां। अच्छा, फर्स्ट डिविजन में आने वाले हो ना, फर्स्ट आने वालों की विशेषता क्या होती है वह जानते हो। फर्स्ट में आने वाले सदा बाप समान होंगे, समानता ही समीपता लाती है, जितना जितना समान उतने उतने समीप, जो उसके गुण वो हमारे गुण, जो उसके संस्कार वो हमारे संस्कार, जो उसके बोल वो हमारे बोल, जो उसकी वृत्ति, जो उसकी दृष्टि, जो उसकी कृति, वो सब हमारा, वो सभी संपूर्णता का है। क्योंकि तो समीप अर्थात समान बनने वाले ही फर्स्ट डिविजन में आ सकते हैं। तो बाप समान कब तक बनेंगे, जब विजय माला के नंबर आउट हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, कोई डेट फिक्स है, डेट फिक्स कौन सी करनी है, डेट नहीं लेकिन अब की घड़ी, क्या इसमें मुश्किल है, कुमारों को कौन सी मुश्किल है, खाना बनाने की। बाबा कह रहे दो रोटी खाना है और बाप की सेवा में लगना है, यही काम है ना। दो रोटी के लिए निमित्त मात्र कोई कार्य करते हो ना, करते हो, लगाव से तो नहीं करते हो, निमित्त कहने से नहीं होता, कुमार कहने से नहीं करते, स्वतंत्र है, अगर उनको बोलो तो नहीं करेंगे, अहम बड़ा अंदर बैठा हुआ है। तो कोई भी कार्य जो भी करते हो, शरीर निर्वाह अर्थ चाहे उधर या यहाँ पर भी जो भी सेवा ले लो, वो केवल निमित्त मात्र है। तो लगाव से तो नहीं करते हो ना, एक है प्यार से करना, एक है लगाव से करना, आसक्त तो हो जाना सेवाओं में। अगर वो सेवा छीन ली जाए और उसकी जगह कोई दूसरी सेवा छीन ली जाए तो अस्त व्यस्त हो जाएंगे। निमित्त कहने से नहीं होता, कुमार कहने से नहीं करते, स्वतंत्र है। तो सदा लक्ष्य रहे बाप समान बनना है, जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट। औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसके लिए सी फादर फॉलो फादर करना है। सपूत बच्चों की दो निशानियों में से पहली निशानी मंजू बहन कौन सी है,
फॉलो फादर,
मात पिता को के डायरेक्शन को फॉलो करने वाले ही तख्त नशीन बनेंगे, खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे, खूब पुरुषार्थ में लग जाओ कमलेश भाई, खूब पुरुषार्थ में लग जाओ, कितना अच्छा शब्द है।
हाँ?
वो हो गया बहुत स्लोगन ना, बाप के सिवा और किसी को याद करने वाले, बेवफाई या फिर इसी तरह से कुछ था, इनको मालूम हो गया, बहुत पक्का हो गया था। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट, औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसके लिए सी फादर फॉलो फादर, क्योंकि वो संपूर्ण है, उसी के जैसा बनना है। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट। बाइबल में एक जगह लिखा है तुम्हें वैसे परफेक्ट बनना है जैसे तुम्हारा बाप है। बी ई परफेक्ट इवन एज योर फादर जो आपकी आसमान पर है, जो कि स्वर्गीय तुम्हारा पिता है, जैसे वो संपन्न और संपूर्ण है वैसे ही संपन्न और संपूर्ण बनो। जीसस क्राइस्ट अपने शिष्यों से कह रहा है मेरे जैसा नहीं बनो। बी ई परफेक्ट इवन एज योअर फादर दैट आर्ट इन हेवन इज परफेक्ट, जैसे वो पिता परफेक्ट है वैसे। यही सदा याद रखो, स्वयं को सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रखो। कहाँ रखो? बाप की छत्र छाया के अंदर, जिसे बाप की छत्र छाया माया की धूप नहीं, कौन सा गीत है, माया की धूप नहीं, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, जिसे तेरी छत्र छाया है वहां माया की धूप नहीं, इस तरह से कुछ है ना उसमें। तो स्वयं को सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रखो, छत्र छाया में रहने वाले सदा मायाचित बन ही जाते हैं। अगर छत्र छाया के अंदर नहीं रहते, कभी अंदर कभी बाहर, तो हार होती है। छत्र छाया के अंदर रहने वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही सर्व शक्तियों की किरणें उन्हें माया जीत बनाती है। तो स्वयं को सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रखो। तुम्हारा रक्षक कौन है? एक बाप है, उसकी छत्र छाया में रहेंगे तो स्वतः ही रक्षा होगी। मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया हुआ है, अब तुम भक्तों का रक्षक बाप आया है। मंजू बहन किस लिए, किस लिए आया है? मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है, तुम भक्तों की रक्षा करने के लिए अब बाप आया है। तुम भक्तों का रक्षक अब बाप आया है किस लिए? तुम्हारी पीड़ा दूर करने के लिए। स्वयं को सदा बाप की छत्र छाया के अंदर रखो, छत्र छाया में रहने वाले सदा मायाजी बन ही जाते हैं। अगर छत्र छाया के अंदर नहीं रहते, कभी अंदर कभी बाहर, तो हार होती है। छत्र छाया के अंदर रहने वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही सर्वशक्तियों की किरणें क्या करती है, उन्हें माया जीत बनाती है। तो सदा बाप की छत्र छाया के अंदर कैसे रहे? अगर इस छत्र छाया के अंदर रहने से कोई मेहनत नहीं, अगर इस छत्र छाया के अंदर रहने से स्वतः ही माया जीत बन जाते हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं, तो प्रश्न है इस छत्र छाया के अंदर उसकी उसके संरक्षण में, उसकी पनाह में कैसे रहे, उसकी छाया में कैसे रहे, या फिर कौन उसकी छत्र छाया में रह सकते हैं? उसकी श्रीमत पर चलने वाले सपूत बच्चों की दो निशानियों में सेकंड निशानी मंजू बहन कौन सी है? जो सच्चे दिल वाले हैं और सच्चे दिल से बाप की श्रीमत पर चलते हैं वो। तो छत्र छाया में प्रश्न है कौन रह सकते हैं और कैसे रहे? सदैव यह अनुभव हो कि हम छत्र छाया में जैसे चल रहे, जैसे मोहम्मद पैगंबर का दिखाते हैं कि जहां उस तपती हुई रेगिस्तान में वह चल रहा है, उसे यह अनुभव हो रहा है कि बादल उसके ऊपर है, जहां जहां वह चल रहा है बादल उसके ऊपर चल रहा है और बादलों की छाया उस पर पड़ रही है। कैसे यह अनुभव हो कि हम जहां भी हैं उसकी छत्र छाया में चल रहे हैं, क्या करें उसके लिए, या फिर इस अनुभव को कैसे सघन किया जाए?
बार बार याद करे तो अनुभव,
कौन सा सुख
जो हमने सुना है,
जो हमने सुना है, केवल ये क्लास नहीं या कोई भी क्लास या कोई भी भाभा के महावाक्य, कौन सुना रहा है इसका इतना महत्व नहीं है, क्या उसका विश्लेषण हो रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, वह भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु केवल ईश्वरीय महावाक्यों में ही वह शक्ति है कि हम सुनने के बाद बाबा के कमरे में केवल 10 मिनट ये याद करें कि हमने क्या क्या सुना, या बाबा के कोई भी महावाक्य जो हमको याद है उतना भी हमने अगर सुना तो अनुभव होगा, उसको याद करो या उसके महावाक्यों को याद करो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मुरली की पॉइंट्स को भी यदि हम याद करें, केवल पॉइंट्स को, छोटा सा एक महावाक्य लेकर भी उसको गहराई से याद करें, बिना देखे, याद करते समय निकाल के देखना नहीं, जितना याद आता है उतना भी याद किया जाए और उस भाव में स्थित होते जाए, तो स्वतः ही स्थिति ऊंची हो जाती है, फिर वहां पर रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भाव में स्थित है, वो शब्द केवल शब्द नहीं है, परंतु हम उन शब्दों के स्वरूप में स्थित है। बाप आए हैं, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है, बहुत दुख दिए, बहुत दर्द दिए, रावण अर्थात देहभान, रावण अर्थात विकार, रावण अर्थात काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने, अहंकार ने, ऐसा उसका विस्तार करते हुए उसके चिंतन में बैठे हुए है कि इन विकारों ने हमें इतना पीड़ित किया है, भक्तों का रक्षक, तुम भक्तों का रक्षक बाप आया है, तुम्हारी पीड़ा को, दर्द को, दुख को, विपदा को, संताप को दूर करने के लिए। तो केवल एक महावाक्य से ही मन शांत हो जाएगा। अभी तो पूरी मुरली पढ़ी ही नहीं है, केवल उतना ही याद किया है, परंतु अर्थ स्वरूप में स्थित होकर तो मन स्वतः ही शांत हो गया है। एक तो है उसके महावाक्यों को याद करना, एक दूसरा उसकी छत्र छाया का अनुभव कैसे हो। तो सबसे पहली विधि है, उसने जो कुछ कहा है उसके जो जो महावाक्य है थोड़े बहुत भी हमें याद रहे तो स्थिति ऊंची रहेगी। एक है विस्मृति की स्थिति, जिसमें मुरली सुनी है परंतु कुछ खास बुद्धि में बैठा नहीं है, जो कुछ है वो लिखा है डायरी में रखा है, सारे पॉइंट्स है उसमें, डिजाइन वगैरह बनाई है, ऐसा ऐसा होता ही क्यों है? बार बार पढ़ो तो नहीं होगा। तो सबसे पहली विधि है याद रखना, दूसरा छोटे छोटे योग अभ्यास। मंजू बहन वरदान, जैसे सेवा के प्रोग्राम बनाते हो वैसे क्या कौन से प्रोग्राम बनाओ? जैसे सेवा के प्रोग्राम बनाते हो वैसे याद की यात्रा अमृत वेले से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक, फ्रॉम डॉन टिल डस्क, यह प्रोग्राम बनाओ कि कब और कैसे, कब और कैसे याद की यात्रा पर रहे। फर्स्ट, जैसे सेवा के प्रोग्राम बनाते हो, रूपरेखा खींचते हो, टाइप करते हो, इतने बजे से इतने बजे तक ये, उतने बजे से उतने बजे तक ये, जैसे वह प्रोग्राम बनाते हो सेवा का, और कितना ध्यान से बनाते हो, एक भी यदि उसमें मिस्टेक है तो रिप्रिंट, फिर से टाइप करते हो, क्योंकि सबको, सबके पास जाना है। तो वैसे ही इस दिनचर्या का भी प्रोग्राम बनाओ कि याद की यात्रा कब की जाए और कैसे की जाए। हमारी दिनचर्या कैसी है, सबके लिए एक ही प्रोग्राम नहीं हो सकता है, यहाँ पर हर एक की दिनचर्या रहेगी, किसी की नाइट ड्यूटी, किसी की मॉर्निंग, किसी की आफ्टरनून, किसी का कहीं कोई समय बहुत बिजी है, कुछ दूसरा समय उसने खाली है। कब और कैसे याद की यात्रा पर रहे, फर्स्ट। सेकंड, ट्रैफिक कंट्रोल, संकल्पों को क्या करना, संकल्पों की ट्रैफिक कंट्रोल, संकल्पों को स्टॉप करने का ट्रैफिक कंट्रोल, ये सेकंड प्रोग्राम बीच बीच में बनाओ। और तीसरा, अगर किसी को
ज्यादा बोलते हैं
ज्यादा बोलते हुए व्यक्त स्थिति में देखते हो तो क्या करो, टूट पड़ो उसके ऊपर।
साइलेंस
क्या करो, अपने शांत स्वरूप स्थिति को धारण करो। तो उससे तीन चीजें हो जाएगी, कौन कौन सी? एक तो वातावरण अव्यक्त हो जाएगा, दूसरा, पहला वही है कि वातावरण शक्तिशाली हो जाएगा, दूसरा अनोखेपन का अनुभव होगा, और तीसरा साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। तो सदा उसकी छत्र छाया के अंदर रहने के लिए सबसे पहला हमने कहा कि उसके महावाक्यों को स्मृति में रखना, दूसरा सारे दिन भर में कब और कैसे याद किया जाए, हमारी दिनचर्या कैसी है, उसमें हम कहाँ और कैसे उसको याद करें, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे किया जाए, और दूसरे व्यक्त स्थिति में है तब अपनी अव्यक्त स्थिति को कैसे धारण करें स्वयं के अंदर। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा, सदा उसकी छत्र छाया में रहने की बात चल रही है, उसके गीत सुनने से भी, बहुत ज्यादा गीतों में नहीं जाना है, परंतु क्योंकि गीत भी व्यक्त भाव में लाता है, बीच बीच में गीत सुनना वो भी स्थिति को अव्यक्त बनाता है, या उसकी छत्र छाया का अनुभव होता है, क्योंकि उसमें उसकी याद होती है, उसमें नई आइडियाज होती है, जो कुछ कुछ वाक्य उसमें होते हैं हमने कभी सुने नहीं होते, तो उसमें नई आइडियाज, नए विचार, नए संकल्प, नई दुनिया, नई झलक और नई दुनिया का साक्षात्कार, तो उसमें नई बातें होती है। और अव्यक्त बाप दादा, कल उस कन्या ने, पूर्वा ने कितना अच्छा कमेंट्री कराई थी, डायमंड हॉल में केवल अव्यक्त बाप दादा है और हम बैठे हैं, कितना सुंदर दृश्य है, नवीनता है, संकल्प में ही नवीनता है, सृजनात्मक संकल्प है ये, कि बाप दादा डायमंड हॉल में बैठे और केवल हम हैं, लूटो जितना लूट सको। भाग भाग के जा रहे हैं बाबा के पास, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होके, वो उधर से भाग रहा है, हम इधर से भाग रहे हैं। तो सृजनात्मक संकल्प है, तो ऐसे नए संकल्पों की भी रचना करना, केवल एक ही संकल्प नहीं कि वो ऊपर है और हम नीचे हैं, उसमें भिन्नता, उसमें नए नए विचार, नए नए संकल्प, जहां जाए, जैसे ये मोहम्मद पैगंबर का उदाहरण दिया और बादल ऊपर ऊपर जा रहा है, तो जहां जहां हम जा रहे हैं ऊपर से उसकी किरणें, कितना सुंदर महावाक्य है, सुना ना, छत्र छाया के अंदर रहने वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, स्वतः ही सर्वशक्तियों की किरणें, स्वतः ही सर्वशक्तियों की किरणें उसे मायाजीत बनाती है, शक्तियों की किरणें नीचे पड़ रही है, जहां जहां हम जा रहे हैं, जिस जिस गली से हम गुजर रहे हैं, वहां वहां से, वहां वहां पर वो किरणें पड़ रही है हम पर, हम उन किरणों के नीचे है, जंगल से जा रहे हैं, तूफानों से गुजर रहे हैं, परंतु वो किरणें हम पर पड़ रही है शक्तियों की, विभिन्न भिन्न परिस्थितियां बदल रही है जीवन में, नए नए लोग आ रहे हैं, परंतु हम शक्तियों की किरणों के नीचे है, छत्र छाया में है, यह अनुभव, और उसकी छत्र छाया में निरंतर रहे, उससे मांगते नहीं रहना है, पुकारते नहीं रहना है, कब तक उससे मांगते रहो, मांगने का काम तो हमारा नहीं है, भक्त मांगते हैं, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद भी अगर हम शांति शांति मांगने उसके पास नहीं जाना है, शांत स्वरूप होकर उसके पास जाना है, शांति मांगने नहीं, पहले शांत होना, या फिर ये भी कह सकते हैं जो अशांत है वो कभी उसके पास पहुंचते ही नहीं है, कितना भी पुकारते रहो, कितना भी पुकारते रहो, हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती, हमारी आवाज उस तक पहुंच ही तब सकती है जब हम शांत है, और जब शांत होकर ही जाएंगे तो शांति थोड़ी मांगेंगे, और हाँ, परंतु जो अशांत है वो शांति मांगते रहते, पर उन तक उन्हों को कभी मिलेंगी भी नहीं। जैसे किसी के घर की कॉल बेल जो है ना, वो खराब हो गई है। कॉल बेल होती है ना घर में बाहर, वो ठीक कराने के लिए मैकेनिक को बुलाया। मैकेनिक आया, पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया। व्यक्ति जो घर वाला है उसको पता ही नहीं, वो आकर चला गया। वो उसको फोन करके पूछता है कि तुम आ क्यों नहीं रहे, मैं तुम्हें कब से बुला रहा है। वो मैकेनिक कहता है, मैं बहुत बार आया, बेल बजाई पर किसी ने खोला नहीं, इसके लिए मैं चला गया। हमारी पुकार भी उस बिगड़ी हुई बेल की तरह है कि जो बजा रहे बजा रहे बजा रहे, किसी दूसरे अर्थ से ये कहानी, बजा रहे बजा रहे बजा रहे पर आवाज पहुंच ही नहीं रही है, बेल जा ही नहीं रही है। हम यहां से पुकार रहे अशांत होकर। उसको पुकारने की विधि है, पहले शांत हो जाओ, पहले शक्तिशाली हो जाओ, फिर उसके पास जाओ, फिर शक्तियां मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, हम स्वयं ही शक्तिशाली होंगे और उसके ऊपर उसकी जो शक्तियों की किरणें होगी वो एडिशन होगी। तो ये एक विधि है कि पहले ही शांत हो जाओ, पुकारेंगे नहीं, पर हमारे हृदय की जो अव्यक्त आवाज है वो स्वतः ही उस तक पहुंचेगी और वो हम जो कुछ भी सोचेंगे वो स्वतः ही होते रहेगा। वहां मांगना उसको कहा ही नहीं जाएगा, वो मांगने वाले पुकारते नहीं, उसको पुकार भी नहीं कहा जाएगा वास्तव में, परंतु हम जो भी सोचेंगे, जो भी सच्चे हृदय से कहेंगे वो स्वतः ही होते रहेगा। जैसे दादियों के उदाहरण में, दादी के मन में अभी कोई संकल्प आता है तो दादी कोई बाबा को जाके कहती थोड़ी है कि बाबा ये करो, केवल संकल्प रखा है कि ये संकल्प है, तुरंत वो पूरा हो जाएगा। दादी ने अपने अनुभव में भी कितनी बार बताया, सामने रखा है संकल्प, वो स्वतः ही पूरा हो जाएगा। अभी अभी एक दो बहनों ने एक किताब लिखी, अभी तक काउंटर पर नहीं आई है वो किताब, जो हमको परसों चार दिन पहले दादी ने खुद दी, गोइंग बियॉन्ड ग्रेटनेस, गायत्री बहन और रूढ़ी बहन, उन्होंने ये किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने क्राइटेरिया लिखा है कि वो ऐसे, ये दोनों बहने हैं तो दोनों ही बाबा की बच्चियां, पर ऐसे व्यक्तियों की खोज में गई जो महानता के भी आगे गई है। तो उन्होंने खोज चालू की कि सारे विश्व भर में ऐसी कौन सी आत्मा है जो दोस्त हुए गॉन बियॉन्ड ग्रेटनेस, महानता की जो परिभाषा है उससे भी परे गई। तो उन्होंने उसमें क्राइटेरिया रखे पहले 10 या 12 कि जो आत्माएं इन कसौटी पर खरी उतरेगी उन्हीं को इसमें लिया जाएगा। तो कई सारे विश्व की अनेक आत्माओं के पास गई, APJ अब्दुल कलाम, ये वो, और फिर अंत में दो आत्माओं को चुना, एक तो दादी जानकी को और एक दूसरे बायोलॉजिस्ट है उनको चुना। और कई आत्माओं को बिल्कुल निरपेक्ष, ऐसा नहीं कि उसमें कोई बायस है कि जिसमें पूर्वाग्रह है, वो उन आत्माओं से ही पूछा जिन जिन का इंटरव्यू लिया कि आप समझते हो कि आपका नाम इसमें आना चाहिए। कईयों ने तो सीधा कह दिया कि मेरा नाम उसमें मत डालना क्योंकि मैं अभी तक उस महानता को नहीं पहुंचा हूं। बहुत ही क्लियर कट उसमें वर्णन है हर चीज का और पूरा डिस्क्रिप्शन है। एक अलग रीति से ये किताब लिखी गई है, गोइंग बियॉन्ड ग्रेटनेस। तो दादियों के जो उदाहरण है उसने दादी ने अपने मुख से अपना जीवन उसमें अलग अलग रीति से बताया हुआ है, साइंटिफिक ढंग से वो किताब पेश की गई है। तो वो पुकारेंगी नहीं ऐसी आत्माएं, परंतु वो जो कुछ रखेगी वो संकल्प स्वतः ही पूरा होगा। जैसे बड़ी दादी ने संकल्प किया था कभी कि चारों ओर गीता पाठशालाएं खुल जाए, वो कौन सी ईयर था वो पता नहीं मुझे, पर उस समय इतनी सेवाएं हुई थी कि चारों ओर इतनी गीता पाठशालाएं खुली उस साल में की बात मत पूछो। वो संकल्प ही तो होगा, वो पुकार तो नहीं थी ना, केवल संकल्प था कि बाबा के सारे गीता पाठशाला चारों ओर खुल जाए। दादी ने संकल्प लिया सुखधाम बन जाए, ये तारीख के अंदर बन जाए, और सभी भाइयों को दे दिया। सुखधाम बन गया उस तारीख के कुछ दिन पहले ही। संकल्प किया कि शांतिवन इस तारीख के पहले बन जाए, सारे भाई बहन लग गए। असंभव सा कार्य था, अगर सरकार को दे दिया गया होता तो नहीं होता। नरेंद्र मोदी जब खुद ज्ञान सरोवर में आए थे कई साल पहले, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तब कहा था कि ये जो ज्ञान सरोवर है, 92 या 90 कब आए थे पता नहीं, 95 में आए थे, तब कहा था ये ज्ञान सरोवर बनने का काम अगर सरकार को दिया गया तो कभी पूरा नहीं होता, आज तक पूरा नहीं हुआ होता, 4 साल में 3 साल में। हाँ, तो ये कैसे कर दिया, संकल्प है। किसके संकल्प है, दादियों के संकल्प है। बाबा को मांग नहीं रहे कि बाबा कर दो, रख दिया, ये संकल्प है और हो गया। तो वो मांगना नहीं है, श्रेष्ठ स्थिति में किए हुए संकल्प स्वतः ही पूर्णता को प्राप्त होते हैं। ओम शांति। किससे हैं?
डॉक्टर बोल रहा हूँ।